भागवत सार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय पर चर्चा है। श्लोक क्रमांक 6 को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। दिष्टया मे भगवान दृष्टो, दुर्दशो यो कृतात्मना। दिष्टया पादरजः स्पृष्टम्, शीर्ष्णा मे भवतः शिवम्। दिष्टया मे भगवान् दृष्टो, दुर्दशो यो कृतात्मना। दिष्टया पादरजः स्पृष्टम्, शीर्ष्णा मे भवतः शिवम्। दिष्टया मे भगवान् दृष्टो, दुर्दशो यो कृतात्मना। दिष्टया पादरजः स्पृष्टम्, शीर्ष्णा मे भवतः शिवम्। भगवान् दृष्टो, दिष्टया सौभाग्य से, मैं मेरा भगवान सर्वशक्तिमान, दृष्ट देखा जाता है, दुर्दर्श सरलता से न दिखने वाला, यह जो अकृत आत्मनाम जिन्होंने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया, दिष्टया अपने भाग्य से पादरजः पैरों की धूली, स्पृष्टम स्पर्श करने पर, शीर्षणा सिर से, मैं मेरा भवतः आपका शिवम कल्याणकारी। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मैं आपके चरणों की धूली को सिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। तात्पर्य, दिव्य जीवन की पूर्णता पवित्र पुरुष के चरण कमलों की पवित्र धूल का स्पर्श करके प्राप्त की जा सकती है। भागवत में कहा गया है, महत्पाद रजो भिषेकम। अर्थात महत अथवा महान भक्त के चरणों की पवित्र धूल से अभिषिक्त। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, महात्मा नस्तु, महान पुरुष आत्मिक शक्ति के वश में रहते हैं और उनका लक्षण यह है कि वे कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं, इसीलिए महत कहलाते हैं। जब तक महात्मा के चरणों की धूली को कोई अपने सिर पर चढ़ा नहीं लेता, तब तक आत्म जीवन में सिद्धि मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्म उन्नति के लिए शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने महत गुरु की कृपा से ही महत बनता है। यदि कोई किसी महापुरुष के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसके महान बनने की काफी संभावना रहती है। जब महाराज रघुगण ने जड़ भरत से उनकी अद्भुत आत्म उन्नति के संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया कि केवल धार्मिक कर्म कांडों का पालन करने या केवल सन्यासी बनने अथवा शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने से ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती है। ये विधियां निसंदेह आत्मबोध में सहायक होती हैं, किंतु वास्तविक प्रभाव तो महात्मा की कृपा से पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की स्तुति में 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु को केवल प्रसन्न करने से जीवन में परम सफलता प्राप्त होती है, और समस्त अनुष्ठानों को करते हुए भी यदि कोई गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाता तो उसकी आत्मसिद्धि तक पहुंच नहीं हो पाती। यहाँ पर अकृतात्मानं शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा के अर्थ हैं शरीर, आत्मा अथवा मन, और अकृतात्मा का अर्थ है सामान्य व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों या मन को वश में नहीं रख पाता। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को महापुरुष या भगवान के परम भक्त की शरण ढूंढनी चाहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। मात्र अनुष्ठानों एवं धार्मिक सिद्धांतों के पालन से सामान्य व्यक्ति आत्मिक सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी और उसके निर्देशन में श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ कार्य करना होगा, तभी वह सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल के अध्याय में अर्थात 21वें अध्याय में हम लोग सुन रहे थे कि कैसे भगवान ने दर्शन दिए कर्दम मुनि को और भगवान ने कहा कि एक दिन बाद स्वयंभू मनु आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर, आपका विवाह उनसे होगा, आप उसको स्वीकार करना। तो अब जब मनु आ गए और गुणगान किया उनका कर्दम मुनि ने, पिछले अध्याय के अंतिम भाग में हमने देखा कि कर्दम मुनि ने मनु का गुणगान किया कि आपको भगवान की शक्ति प्राप्त है, आप अगर आंखें बंद कर लें तो अधर्म फैल जाएगा इत्यादि। तो अब ये सुनकर थोड़ा सा सकुचा गए मनु, क्योंकि स्वाभाविक है एक व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, जो ये जानता है कि सब कुछ भगवान की योजना से होता है, सारी शक्ति भगवान की है, वो जब अपने विषय में कुछ गुणगान सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि ये गुणगान भगवान के लिए है। तो ये भाव हमारा होना चाहिए, जब हमें कोई गुणगान मिले, कोई आदर सम्मान मिले, कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कार्य करे, कोई मान सम्मान दे, तो हमें जानना चाहिए कि ये श्री कृष्ण के लिए है। हमारा गुण क्या है, हमारी कला क्या है। कभी कभी लोग किसी की कला के लिए उसको गुणगान कर देते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन एक भक्त को अपने लिए कभी भी जो उसका सराहना करते हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रेय अपने लिए नहीं लेना चाहिए, श्रेय भगवान को देना चाहिए। जैसे जब अर्जुन ने युद्ध किया, अगर हम पूरा महाभारत का युद्ध देखें तो अर्जुन तो कब का मर गया होता। ये तो श्री कृष्ण की कृपा थी कि अर्जुन हरेक को मार सका। यही प्रश्न किया था, इतने बड़े बड़े तिमिंगल मछलियां, मछलियों का उदाहरण देते हुए प्रश्न हुआ कि महाभारत के युद्ध में इतने बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, लेकिन फिर भी अर्जुन कैसे जीत गए। तो अर्जुन जीता भगवान की कृपा से। तो इसलिए अगर हम जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य कर लें, बड़ा प्रचार कर लें, कोई बहुत बड़े चीज का निर्माण कर लें, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे कारण है। प्रभुपाद इसी तात्पर्य के पहले तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो अपने गुरु महाराज से मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो उस समय जैसे ही उन्होंने देखा, पहली ही बार देखते ही कह दिया कि तुम्हें प्रचार करना है, अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आज जो हम प्रचार कर रहे हैं, हमने जो भी थोड़ा बहुत कार्य किया है, ये उनकी कृपा है, उनके एक क्षण के दर्शन का लाभ है। तो महत्व बताते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति हजारों जीवन जी सकता है, कोई लाभ नहीं है, हजारों जीवन निकल जाएंगे अगर भक्तों की कृपा नहीं है, लेकिन एक क्षण में भक्तों की कृपा हो जाए तो फिर सारे जीवन समाप्त हो सकते हैं, जीवन की सिद्धि मिल सकती है। और इसीलिए उदाहरण देते हैं कि हम भी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो उस समय उन्होंने हमें यह आदेश दिया देखते ही, और आज उनके आदेश के कारण, उनकी कृपा के कारण हम इस आंदोलन को बढ़ा सके। तो प्रभुपाद उदाहरण से दिखलाते कि इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया, इतना बड़ा आंदोलन बनाया, लेकिन श्रेय वो अपने गुरु को दे रहे हैं, अपने आप को श्रेय नहीं दे रहे हैं कि मैंने ये किया, कि नहीं उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे मिला। तो एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहां मनु जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इस अध्याय के अंतिम भाग में वो चर्चा आएगी। तो इसलिए जैसे उन्होंने अपनी सराहना सुनी और ये सुना कि कर्दम मुनि उन्हें बहुत महान कह रहे हैं कि आप देखिए कितना व्यक्ति को अहंकार हो जाएगा अगर उसको कहा जाए कि अगर आप आंख बंद कर लोगे तो अधर्म फैल जाएगा। कितनी बड़ी बात है, सारे ब्रह्मांड में अधर्म फैल जाएगा अगर आप आंख बंद कर लोगे, आप अगर घूमोगे नहीं तो चोर लुटेरे बढ़ जाएंगे। तो वैसे तो बड़ी अहंकार की बात है कोई अगर सुन ले, लेकिन मनु को कोई अहंकार नहीं, उल्टा उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अरे मेरा गुणगान क्यों, गुणगान तो भगवान का होना चाहिए। और फिर उन्होंने कर्दम मुनि का गुणगान करना शुरू किया। तो कर्दम मुनि उनका कर रहे थे, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय का गुणगान कर रहे थे, और क्षत्रिय ने फिर ब्राह्मण का गुणगान करना शुरू किया। और मनु ने कहा कि वेदों को जानने वाले भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आपकी सृष्टि की है ताकि आप ज्ञान को प्रसार कर सकें, वेदों को फैला सकें, आप ज्ञान को बांटते हैं, और आपकी रक्षा करने के लिए हमें क्षत्रियों को बनाया। और एक बेहद बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि आपका कार्य है वेदों को फैलाना, वेदों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, और आपकी रक्षा करने के लिए हमें बनाया, और हम लोग एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो ये कैसे हुआ, अगर क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा कर रहे तो ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा कैसे कर सकता है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय को ज्ञान देकर उसकी रक्षा करता है, और क्षत्रिय ब्राह्मण को बचाता है या रक्षा करता है, उसके शरीर की रक्षा, उसके बाकी चीजों की रक्षा, उसकी सुविधा की रक्षा, कि उसको सारी सुविधा मिले भगवान की भक्ति करने के लिए। सुविधाएं ऐसे नहीं दी जाती थी, ब्राह्मणों को वो सुविधा नहीं चाहिए जो राजाओं के पास है। जैसे मनु महाराज, इनका तो बहुत बड़ा महल था, ये तो कोई कुटिया में नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने कर्दम मुनि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बहुत बड़ा महल नहीं बना दिया, कोई बहुत सारे सैनिक नहीं लगा दिए, लेकिन सुविधा कैसे राजा प्रदान करते हैं, वो सुविधा जिससे भक्त भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ये कर्तव्य है, इसे वर्णाश्रम पद्धति कहते हैं। वर्णाश्रम पद्धति का अर्थ है कि एक दूसरे को सहयोग करना भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जितने भी वर्ण हैं, फिर वो चाहे ब्राह्मण हो, फिर वो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इन्हें आपस में एक दूसरे से सहयोग करना है, किस लिए, ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। वर्णाश्रम पद्धति का उद्देश्य ही यही है। वर्णाश्रम पद्धति किसी एक वर्ण को बहुत महत्व देने के लिए नहीं बनाई गई है। कभी कभी लोग वर्णाश्रम पद्धति को ठीक से ना समझने के कारण अपनी स्थिति का अहंकार कर बैठते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं इत्यादि। वर्णाश्रम पद्धति बनाई गई है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। एक ही उद्देश्य है वर्णाश्रम का, भगवान की प्राप्ति, और हर वर्ण एक दूसरे को सहयोग करें। तो क्षत्रिय रक्षा करें, सुविधा प्रदान करें, जिससे ब्राह्मण वेदों को संभाल सकें, वेदों का प्रसार कर सकें, और वैश्य ये लोग धन अर्जन करें, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य धर्म स्वभावजम, तो वे लोग धन अर्जन करें, और जो शूद्र हैं वे सारे कार्य करें, मदद करें। तो इससे कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, इसका उद्देश्य है कि सब मिलकर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हमारा मंदिर है, तो हमारे मंदिर में कोई भगवान के विग्रह की सेवा करता है, कोई मंदिर साफ करता है, कोई भगवान के लिए भोग बनाता है, कोई अन्य कार्य करता है, कोई प्रचार करता है, कोई व्यवस्थापन देखता है, तो ये सारे मिलकर भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मंदिर में अंदर पुजारी है जो भगवान के विग्रह की सेवा करता है वो श्रेष्ठ है, और जो बाहर मंदिर में झाड़ू लगा रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है, दोनों समान है। वर्णाश्रम यही है कि हर सेवा को, हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर किया जाए, चाहे वो झाड़ू लगाने का कार्य हो जो साधारण भाषा में एक शूद्र का कार्य है, लेकिन हम लोग देखते हैं हमारे मंदिर में ब्राह्मण भी वो कार्य करते हैं। ये दैवी वर्णाश्रम है। दैवी वर्णाश्रम मतलब जहां एक ही उद्देश्य है भगवान की सेवा, हर कार्य को भगवान की सेवा माना जाता है, कोई कार्य को नीच नहीं माना जाता, निकृष्ट नहीं माना जाता। चाहे हमें जाकर टॉयलेट ही क्यों ना साफ करना हो, वो भी अगर भगवान के मंदिर का है तो उसको साफ करना भी निकृष्ट नहीं माना जाता, वो भी भगवान के विग्रह सेवा के समान है। ये सही समझ है कार्यों की, वर्णाश्रम की। तो मनु महाराज गुणगान करने लगे कि आपको वेदों को संभालने के लिए बनाया है, हमें बनाया आपकी रक्षा के लिए, हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो ये जो सहयोग है भक्ति में, ये बहुत आवश्यक है। भक्ति अकेले नहीं होती, इसको जान लीजिए। हम अपने बल पर भक्ति नहीं कर सकते, यही प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं इन पहले 6-7 श्लोकों के तात्पर्य में। भक्ति जैसे हमने अभी तात्पर्य पढ़ा, प्रभुपाद ने कहा गुरु को प्रसन्न करके होती है। तो भक्ति का अर्थ है हम एक दूसरे से सहयोग करें। प्रभुपाद ने एक समय कहा है कि आप अगर अपना प्रेम मेरी ओर दिखाना चाहते हो, मुझे प्रेम करना चाहते हो, तो एक दूसरे से सहयोग करो। तो ये सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर मनु महाराज यही कह रहे हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, हम आपकी रक्षा करते हैं। भक्ति में सहयोग बहुत आवश्यक है। अपने आप को श्रेष्ठ मान लेना, थोड़ा बहुत अहंकार आ जाना, ये बहुत गलत है। ये भक्ति में पतन का मार्ग है, कोई प्रगति नहीं होगी। हो सकता है आपको पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, लेकिन अगर आप एक दूसरे से सहयोग करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो कृष्ण प्रसन्न नहीं है। श्रीमद् भागवत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, जहां प्रचेता बहुत वर्षों तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, और भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान उनसे क्या कहते हैं? भगवान ये नहीं कहते कि आपकी कड़ी तपस्या के कारण मैं प्रसन्न हूं। भगवान कहते हैं कि आप एक दूसरे से सहयोग करते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं। तो इसलिए भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को सहयोग करना बहुत आवश्यक है। जैसे यहां मनु महाराज तो बहुत बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा, आगे वर्णन आएगा कि उनका जो महल था इतना ऊंचा था कि अगर कोई प्लेन से जा रहा है तो महल के ऊपर कोई खड़ा है तो दिखाई देता था, इतना ऊंचा उनका महल था। तो कितने बड़े राजा, कितने ऐश्वर्यशाली राजा हैं। लेकिन जब कर्दम मुनि के पास आ रहे हैं, जो एक कुटिया में रह रहे हैं, कोई राजकाज नहीं, उनका रहने का क्या स्थान है, छोटी सी कुटिया बनी हुई है जंगल में, लेकिन उनका गुणगान कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है भक्ति में, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे की सेवाओं में सहयोग करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये जान लीजिए कि अगर हम एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे और अपने बल पर व्यक्तिगत रूप पे बढ़ने का प्रयास करेंगे, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं तो बहुत ज्यादा जप करके, मैं बहुत ज्यादा प्रयास करके, बहुत ज्यादा कुछ अकेले सेवा करके आगे बढ़ जाऊंगा, बाकी सब यही रहेंगे, मैं तो इसी जीवन में भगवान के धाम जाऊंगा, बाकी सब यही रहने वाले, क्योंकि ये लोग सब कोई उस स्तर के नहीं है, कोई भक्ति अच्छी नहीं करते हैं। नहीं, हाँ, अपने व्यक्तिगत तौर पर हमें हमारी साधना बहुत कड़ाई से करनी है, लेकिन सहयोग नहीं छोड़ना। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विदिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातेव कल्पते। एकांत की, अगर आप अकेले जाकर भक्ति करोगे, श्रुति स्मृति पुराण के नियमों को त्याग दोगे, और क्या नियम है? भक्तों का संग, भक्तों की कृपा, ये मूल नियम है। जैसे प्रभुपाद भागवत का जड़ भरत की कथा को समझा रहे हैं इस तात्पर्य, ये नियम है। महत पाद रजोभिषेकम, प्रहलाद महाराज भी यही बात कहते हैं, और हर शास्त्र में, हर भक्ति शास्त्र में इस बात को महत्व दिया गया है। महाजनो ये न गतः सपन्था, एक ही मार्ग है भक्ति प्राप्त करने का, भक्तों की कृपा। और भक्तों की कृपा कब आएगी? जब हम आपस में सहयोग करेंगे। हर एक भक्त को ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे दूसरे भक्त की प्रगति हो भक्ति में, बस भगवान प्रसन्न हो जाए। मैं ऐसा कौन सा रोज हमें ऐसा कार्य कोई करना है कि जिससे दूसरे भक्त की प्रगति हो, मैं सुविधा प्रदान करूं जिससे दूसरा भक्त भक्ति में आगे बढ़ सके। रात को सोने से पहले सोचना चाहिए कि आज मैंने भक्तों की सेवा के लिए क्या किया। क्या मैंने पूरा दिन अपने अहंकार को बढ़ाने में बिताया? क्या मैंने पूरा दिन अपनी सेवा में बिताया? क्या मैंने पूरा दिन अपने को श्रेष्ठ बताने में बिता दिया? या मैंने दिन में एक बार भी ऐसा कोई कार्य किया जिससे किसी दूसरे भक्त को भक्ति में प्रगति हुई? तब रात को नींद अच्छी आएगी, संतुष्टि होगी कि हाँ मैं कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता लेकिन कम से कम इतना तो कर सकता हूं, ये भक्त की सेवा। तो ये सहयोग आवश्यक है। तो सहयोग का सिद्धांत क्या है? दूसरे भक्त को भक्ति के लिए सुविधा प्रदान करना और अपने लिए जहां हम हैं अपनी साधना को बड़ी कड़ाई से करना, तो उससे हमारी भी प्रगति होगी और अन्यों की भी प्रगति होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है और यहां यह सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है कि कैसे एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को सहयोग करके ही केवल भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि अगर भक्तों की कृपा नहीं है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। अगर भक्त की कृपा है तो भगवान की कृपा निश्चित आएगी। भगवान को बाध्य होना पड़ेगा कृपा देने के लिए। वैसे तो भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता, स्वराट है, लेकिन अगर भक्त ने कृपा कर दी तो क्योंकि प्रेम है भक्त से, उस प्रेम के वश वो बाध्य होकर आप कृपा करेंगे। यह सिद्धांत है भक्ति का, रहस्य ये है, भक्ति में प्रगति का रहस्य ये है। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से सहयोग नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे को प्रसन्न नहीं रख सकते, तो कृष्ण को क्या प्रसन्न रखेंगे, गुरु को क्या प्रसन्न रखेंगे, वैष्णवों को क्या प्रसन्न रखेंगे? इसलिए आपस में अगर हमें अभ्यास करना है आध्यात्मिक जगत का, गोलोक जाना है, केवल बोलिए नहीं उसको करके दिखाइए। गोलोक जाना है तो गोलोक का भाव क्या है? श्रीमती राधा रानी ये चाहती हैं कि दूसरा भक्त भगवान की सेवा करें, वो मुझसे अच्छा भक्त है, वो उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं। आध्यात्मिक जगत का भाव है कि हम दूसरों को आगे बढ़ाएं, हम दूसरों को सुविधा प्रदान करें और उसको देखकर प्रसन्न हो। हमारी प्रसन्नता ये होनी चाहिए भक्त की कि अगर कोई दूसरा भक्त भक्ति में बड़ी तीव्रता से प्रगति कर रहा है उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। वैष्णव पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, सुख को नहीं। दूसरों के सुख, दूसरों की भक्ति, दूसरों की प्रगति को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जैसे प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं, सबको ले जाइए भगवान के धाम में, भगवान आप सबको अपने धाम ले जाइए। और अगर आप सोचते हैं कि अरे ये लोग बड़े पापी हैं, इनके बहुत सारे पाप हैं, उसका क्या होगा, मुझे दे दीजिए, कोई चिंता नहीं, मैं करोड़ों 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 जन्मों तक, वर्षों तक नरक में रहने के लिए तैयार हूं अगर बाकी सब भगवान के धाम जा रहे हैं। ये भक्त का भाव। तो इसलिए अगर हम भगवान के धाम की बात करते हैं, कृष्ण प्रेम की बात करते हैं, उससे पहले आपस में प्रेम करना सीखना चाहिए, आपस में सहयोग करना सीखना चाहिए, आपस में एक दूसरे के भक्ति की प्रगति का ध्यान रखना चाहिए। हमारे किसी भी कार्य से उसकी भक्ति में बाधा नहीं आए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको सहयोग कहते हैं। ये सच्चा सहयोग है। किसी व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति में सहयोग करना सहयोग नहीं है, मित्रता नहीं है। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता की, धर्म के विरुद्ध, उसको समझाया नहीं। तो कर्ण ने दुर्योधन की इंद्रिय तृप्ति में मदद की, सहयोग किया, वो सच्ची मित्रता नहीं है। सच्ची मित्रता है जैसे विदुर और धृतराष्ट्र का प्रेम, ये सच्चा प्रेम था विदुर का। विदुर ने आकर धृतराष्ट्र से ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा है तुम जैसे हो, बहुत अच्छे वैसे ही बने रहो, नहीं, धृतराष्ट्र को डांटा उन्होंने, बड़े अपशब्द कहे, भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो तुम। बाहरी दृष्टि से लग सकता है बिल्कुल प्रेम नहीं, कौन ऐसे प्रेम से कहेगा, लेकिन वो प्रेम है, क्योंकि धृतराष्ट्र के प्रगति चाहते थे वो, और प्रगति हुई, क्योंकि अगर धृतराष्ट्र ऐसे नहीं सुनते तो वो छोड़ते नहीं, उन्होंने छोड़ा, भगवान पर ध्यान किया और भगवान पर ध्यान करते हुए अपने देह को त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त किया, अन्यथा वो पड़े रहते। तो इसीलिए सच्ची मित्रता, सच्चा सहयोग, एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाना है, सुविधा प्रदान करना। तो यहां मनु महाराज यही कर्दमनि से कहते हैं, और फिर आठवें श्लोक से आगे वो वर्णन करते हैं कि मेरी एक चिंता है, एक पुत्री है मेरी, तो इस पुत्री का मैं विवाह करना चाहता हूं देवहूति का आपसे। और फिर वो कई कारण देते हैं कि क्यों आपको देवहूति से विवाह करना चाहिए। वो कहते हैं कि देवहूति अच्छे वर को ढूंढ रही है, या मैं देवहूति के लिए अच्छा वर ढूंढ रहा हूं, तो इसीलिए आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा कारण वो कहते हैं कि जब से देवहूति ने नारद मुनि से आपके विषय में सुना है, उसने अपना मन आपको दे दिया है, या आप पर ही केंद्रित किया है, तो इसीलिए वो आपसे ही विवाह करना चाहती है, तो आपको इसलिए भी उससे विवाह करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बताते हैं कि देखिए श्रवण का क्या महत्व है। देवहूति ने देखा नहीं था कर्दम मुनि को, जानती नहीं थी, लेकिन नारद मुनि से सुने थे उनके गुण। जैसे रुक्मिणी, रुक्मिणी कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन गुण उनके सुने थे, जो लोग आया करते थे वहां से कृष्ण की लीलाओं को सुनाते थे, और सुन सुन के प्रेम उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए हमें सुनना चाहिए, श्रवण से कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, श्रवण से हृदय शुद्ध होता है, श्रवण से आसक्ति बढ़ती है, श्रवण से जितने भी दुर्गुण हैं वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि देवहूति ने आपके विषय में सुना है, और साथ ही साथ वो हर दृष्टि से आपके लिए योग्य है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि एक योग्य पत्नी का चुनाव करना चाहिए। योग्य किस दृष्टि से? भक्ति की दृष्टि से, अर्थात वो भक्ति में सहायक करने के लिए योग्य हो। ऐसे हमें जब हम लोग अपने लिए जीवन के लिए वर या वधु ढूंढ रहे हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए भक्ति में सहायक है, योग्य है। तो योग्यता भक्ति में होनी चाहिए। तो मनु महाराज ने कहा कि आपके लिए योग्य है, और फिर उन्होंने कहा कि ये आपको मिल रहा है अवसर, और जो आपके पास आए आपको ऐसे ठुकराना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आपकी तो इच्छा है विवाह करने की, मुझे पता चला है आप विवाह करना चाहते हैं, तो इन सब कारणों से आप देवहूति को स्वीकार कीजिए। तो उस समय कर्दम मुनि ने बहुत सुंदर तरीके से स्वीकृति दी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं विवाह करूंगा देवहूति से। और उन्होंने भी कई कारण दिए कि क्या कारण है मैं विवाह करूं। तो उन्होंने बताया कि पहला कारण, मेरी इच्छा है विवाह करने की, वही तो मैंने भगवान से मांगा है, तो इसलिए मेरी इच्छा है। और दूसरा, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ है देवहूति का। तीसरा कारण वो देते हैं कि ये बहुत सुंदर है, और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि गंधर्वों के राजा भी इसकी सुंदरता को देखकर अपने विमान से गिर पड़े थे। तात्पर्य में प्रभुपाद उस प्रसंग को बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इतनी ऊंची इमारतें थी उस समय भी। आज हम लोग बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि देखिए कितनी ऊंची इमारत होगी कि प्लेन से जो व्यक्ति जा रहा है उसको स्पष्ट उस स्त्री का सौंदर्य दिखाई दिया। स्त्री नहीं केवल, दूर से बहुत छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है, स्त्री दिखाई दी, उसका सौंदर्य दिखाई दिया, और इतना सुंदर थी कि वो अपने प्लेन से गिर गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वो एक बार प्लेन से जा, विश्ववासु जो गंधर्वों के जो प्रमुख हैं वो जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि देवहूति अपने महल की छत पर गेंद से खेल रही थी, और उनको देखकर, केवल उनकी सुंदरता को देखकर गिर पड़े, अपने बेहोश हो गए, इतनी सुंदर थी। तो कर्दम्बुनि कह रहे मैंने सुना है इतनी सुंदर है वो। और प्रभुपद उस तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि देखिए पहले भी कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। तो क्यों लिखते हैं? हमें समझाने के लिए कि हमें अपने प्रगति का अहंकार नहीं होना चाहिए। दरअसल प्रगति नहीं है। आज तो हम इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बना पाते हैं कि प्लेन से दिखे कि कौन कहां पर है। तो उस समय इतनी ऊंची बिल्डिंग्स थी, क्या ऐश्वर्य था, और लोगों के अपने प्राइवेट प्लेन थे। आजकल तो हम लोगों को प्लेन में खर्चा करके जाना पड़ता है, एक प्लेन में 300 लोगों को भर दिया जाता है, ऐसे बैठकर जाना पड़ता है कितनी भी लंबी जर्नी हो। लेकिन उस समय लोगों के अपने प्राइवेट प्लेन में घूमते थे। प्रभुपाद लिखते हैं उनके अपने प्राइवेट, क्या ऐश्वर्य था। आजकल भी लोगों के पास हैं प्राइवेट प्लेन, लेकिन बहुत थोड़े हैं, दुनिया में कुछ लोगों के पास है, लेकिन उस समय ऐसे देवता लेकर घूमते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए हमें अपनी प्रगति का, अपने ऐश्वर्य का। पहले बहुत थी प्रगति, ये तो कलयुग आ गया है, सारी चीजें कम होती गई हैं, इसीलिए जो ऐश्वर्य है वो भी कम हो गया। तो ऐसे उन्होंने कहा कि मैंने सुना है वो बहुत सुंदर है, और साथ ही साथ इसका विवाह शास्त्रोचित है, शास्त्र के अनुसार है। मनुस्मृति में जो मनु ने मनुष्यों के लिए दी है, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, और 8 प्रकार के विवाह जिनमें पहला ब्रह्म विवाह आता है। ब्रह्म विवाह मतलब जो व्यक्ति वेदों को जानता हो उसको बुलाकर उसकी पूजा करके फिर उसको कन्यादान किया जाता है, तो उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह होता है दैव विवाह। दैव विवाह अर्थात जहां जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसको कन्यादान किया जाता है। इन 8 प्रकार के विवाहों में कुछ विवाहों में कन्यादान किया जाता है, कुछ में नहीं। तो दूसरा है दैव, दैव में भी कन्यादान किया जाता है। तीसरा है आर्ष, आर्ष का अर्थ होता है जहां जो जिससे विवाह करना है जिस वर से उससे गाय दान में ली जाती है और फिर कन्यादान किया जाता है, तो इसको आर्ष विवाह कहते हैं। और फिर चौथा विवाह होता है प्राजापत्य। प्राजापत्य विवाह में दोनों से कहा जाता है, दोनों को धर्म सिखलाया जाता है और कहा जाता है कि आप दोनों एक साथ रहकर धर्म का पालन करें और फिर कन्यादान किया जाता है, तो ये प्राजापत्य कहलाता है। और पांचवा है आसुर, आसुर विवाह। आसुर विवाह में जो वर है वो धन देता है और विवाह करता है, तो आसुर विवाह कहा गया। और छठा विवाह है गंधर्व। गंधर्व अर्थात जहां लड़का और लड़की, वर और वधू अपने आप निश्चित करते हैं और फिर उनका विवाह होता है, गंधर्व विवाह कहा जाता है। और फिर राक्षस विवाह, सातवां राक्षस पद्धति। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया थे सुखदेव गोस्वामी से, जब रुक्मिणी के विवाह का सुनना चाहते थे कि मैंने सुना है श्री कृष्ण ने राक्षस पद्धति से रुक्मिणी से विवाह किया, तो कृपया बताइए। तो ये सातवें प्रकार का विवाह है, राक्षस पद्धति जिसे कहते हैं। इसमें हरण किया जाता है, हो सकता है उसकी इच्छा से, कभी कभी ना भी हो, लेकिन हरण करते हैं, तो उसको राक्षस पद्धति कहते हैं। और आठवें प्रकार का विवाह है पैशाच, पिशाचों का। और वो ऐसा है कि जहां अगर कोई स्त्री सो रही हो या नशे में हो, उसको पता नहीं हो, अपने होश में नहीं हो, तो उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाकर उससे विवाह करना, ये पिशाच विवाह कहलाता है। तो ऐसे आठ प्रकार के विवाह मनुस्मृति में दिए गए हैं। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि ये शास्त्रोचित है, शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि आप आए हैं पुत्री को दान कर रहे हैं कन्यादान, तो इसलिए शास्त्र के अनुसार है, इसलिए मैं विवाह करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि ये स्वयं इच्छा कर रही है, देवहूति की भी इच्छा है, इसलिए भी मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो ऐसे कर्दम मुनि ने कहा और वो शांत हो गए। और फिर उस समय मनु और शत्रुपा, उनकी पत्नी शत्रुपा ने बहुत सा धन दिया, बहुत सा ऐश्वर्य इत्यादि, और उन्होंने विवाह किया, और उस समय देवहूति का विवाह हुआ। और फिर विवाह करके मनु महाराज और शत्रुपा इत्यादि जो भी आए थे, वे लोग वापस अपने नगर में चले गए। और यहाँ इनके महल, इनके कुटिया में देवहूति को छोड़ गए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आगे हम लोग देखेंगे देवहूति की तपस्या अगले अध्याय में। तो कैसे, अगले अध्याय में बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे पत्नी को रहना चाहिए अपने पति के साथ। हम लोगों ने पिछले अध्याय से सुनना प्रारंभ किया था गृहस्थ जीवन का विषय, कि कैसे विवाह के पहले क्या होना चाहिए, और फिर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं विवाह के समय क्या होना चाहिए, कैसे क्या देखकर विवाह करना चाहिए। जैसे उनके गुणों को देखकर विवाह किया, कर्दम मुनि के गुणों का गुणगान किया, और उन गुणों को देखकर ये जो कारण दिए गए, तो इन कारणों से, अन्य कोई कारण से विवाह नहीं होना चाहिए। बहुत धन है, बैंक बैलेंस है, अमेरिका में रहता है, या आईएएस ऑफिसर है, इत्यादि इत्यादि, ये सब हो सकता है, लेकिन प्रमुख चीजें ये होनी चाहिए कि शास्त्रोचित हो, योग्य हो, योग्य अर्थात दोनों भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ऐसे मनु महाराज चले गए, और फिर वो अपनी नगरी में वापस गए, जहां पर वहां के जो निवासी थे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो ये अंतिम भाग इसका वर्णन आता है 28वें श्लोक से आगे, कि मनु महाराज अपनी महल में पहुंचे नगरी में, और कैसे रहते थे इसका वर्णन किया। बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, सतत भगवान का नाम लेते थे, और कुशा घास पर बैठकर वे कुशा के आसन बिछाकर भगवान की भक्ति किया करते थे। तो इसमें वर्णन किया है कुशा को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कुशा जो घास है वो क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे जो आसन होने चाहिए, साधारणतः हम लोगों के पास यहाँ तो नहीं है, लेकिन साधारणतः भक्ति के समय, तपस्या के समय कुशा के आसन इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका कारण क्या है, ये कुशा क्या है, ये भगवान वराहदेव के शरीर के बाल है। जिस समय वराहदेव आए थे, तो उस समय जब वो अपने शरीर को झाड़ रहे थे, पानी से आए थे, तो जैसे होता है आपने देखा एक वराह ऐसे ऐसे मुंह घुमाकर सब पानी फेंकता, तो उस समय उनके कुछ बाल गिरे थे, तो वो बाल कुशा बने हैं, इसलिए बड़े पवित्र माने जाते हैं, भगवान के शरीर के बाल हैं, तो इसलिए उसको बिछाकर तपस्या की जाती है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध हैं। तो मनु महाराज उस पर बैठकर, कुशा जो घास है उस पर बैठकर वो तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और जब भी ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया, तो उन्होंने धर्म के सिद्धांतों को भी कहा, इसलिए मनुष्यों के लिए जो धर्म है वो मनु देते हैं, मनु से मनुष्य आते हैं, मनु अर्थात मनुष्यों का सृजन करता, जिन्होंने मनुष्यों को धर्म दिए। इसीलिए मनुस्मृति, मनुसंहिता ये हमारे लिए नियम है कैसे जीना चाहिए मनुष्यों को, और बहुत विस्तार से उसमें नियम दिए गए हैं। जैसे एक राजा को किसको कब कैसा दंड देना चाहिए, ये सब उसमें विस्तार से दिया गया है। तो ऐसे मनु महाराज अपना जीवन वहां पर बहुत स्वागत किया, उनके जो राज के लोग थे, उनके जो नागरिक थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवत में अन्यत्र भी, जैसे जब श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचे तो वहां पर स्वागत किया, तो प्रभुपाद कहते कि आवश्यक है जब राजा कहीं जाकर बाहर वापस आए, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो जैसे श्री कृष्ण का किया, जब श्री कृष्ण 2-3 महीना बाहर रहकर वापस आए थे तब उनका स्वागत किया। तो ऐसे मनु महाराज का स्वागत हुआ। वैसे मनु पूरा समय अपना जो मनवंतर, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्वयंभू मनु की, पहले मनु। और भगवान ने भगवद गीता में वर्णन किया वैवस्वत मनु, जो सातवें मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं और एक मनु का समय करीब 71 चतुर्युग का होता है। उतने समय तक मनु रहते हैं और नियमों को स्थापित करते, धर्म को स्थापित करते हैं। फिर दूसरे मनु आते हैं, फिर तीसरे, चौथे, ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिवस में आते हैं। तो 71 चतुर्युग तक स्वयंभू मनु भगवान की भक्ति करते रहे, हर समय हर क्षण वो भगवान की भक्ति किया करते थे, धर्म पर बोला करते थे, और ऐसे उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो इतना कहकर मैत्री मुनि ने विदुर से कहा कि जो तुमने पूछा था स्वयंभू मनु के बारे में मैंने बताया, अब मैं देवहूति का वर्णन करता हूँ। तो अब अगले अध्याय से बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि देवहूति एक राजकुमारी थी, राजा के महल में पलकर बड़ी हुई थी, पूरे ऐश्वर्यों में, और उनका विवाह हुआ करदम मुनि से। महल नहीं, शायद कुटिया का दरवाजा भी नहीं होगा, पता नहीं हमें। तो ऐसे उनका विवाह हुआ, तो वो कैसे रही और क्या उन्होंने आचरण किया, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।